आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 13, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो पाठ शुरू करने से पहले हम पहले लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं, इसीलिए आप लोग अपनी अपनी बुक्स के पेज नंबर 83 पर आ जाइए। पेज नंबर 83 पे यहाँ लेखक का परिचय दिया हुआ है, पहले इसे मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 यानी 1927 में। और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कहाँ कहाँ नौकरी की? ये अध्यापक भी रहे, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के पद पे भी रहे, दिनमान में उप संपादक रहे और पराग का इन्होंने संपादन भी किया। और फिर सन 1983 यानी 1983 में इनका आकस्मिक निधन यानी कि अचानक इनका देहांत जो है वो हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनके कविता संग्रह हैं, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उपन्यास, लड़ाई कहानी संग्रह, बकरी नाटक, भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। कूटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तो देखिए, ये जो सर्वेश्वर जी थे, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। क्यों? क्योंकि ये एक ही तरह की चीजें ना लिख के कई विधाओं में लिखते थे, है ना। साहित्य के हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी कलम को आजमाया। जैसे इन्होंने कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे, नाटक भी लिखे, सब कुछ लिखा। तो इनकी प्रमुख कृतियों की जब बात आती है तो जो कविता संग्रह है ना, जो काव्य इनका एकत्रित है, वो है काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, कूटियों पर टंगे लोग, ठीक है। इनके उपन्यास है पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल। कहानी संग्रह लड़ाई, नाटक बकरी और बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा, यानी बच्चों के लिए भी इन्होंने कहानियां लिखी है जो बच्चों का मनोरंजन कर सके, बच्चों को कुछ सीख दे सके, जैसे भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता और लाख की नाक। इनके लेखों का, निबंधों का जो संग्रह है वो है चर्चे और चरखे। इनकी एक कविता जो संग्रह है खूंटियों पर टंगे लोग, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इतने बड़े पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। इनको क्या कहा जाता है? मध्यवर्गीय आकांक्षाओं का लेखक, यानी जो मध्यवर्गीय परिवार होते हैं, मध्यवर्गीय व्यक्ति है, उसके जीवन में उसकी क्या इच्छाएं होती हैं, क्या उसके सपने होते हैं, उनके लिए वो क्या संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, उसका शोषण भी होता है ना, उसे बहुत सी चीजें झेलनी पड़ती हैं, निराश होना पड़ता है, हताश होना पड़ता है, जीवन में कुंठा आने लगती है। तो जो भी उसके जीवन की परेशानियां हैं या जीवन में जो भी उसके भाव हैं, उन सबको अपने साहित्य में सक्सेना जी बहुत ही अच्छे से व्यक्त करते थे। स्तंभकार थे, यानी जो दिनमान पत्र आता था उसमें चर्चे और चरखे नाम से इनका एक स्तंभ निकलता था, एक कॉलम निकलता था, जिसमें ये लिखते थे और इसमें दिखाई देता था कि ये कितने बेबाकी से सच कह देते थे, जो इन्हें दिखता था अपने आसपास समाज में उसको ये वैसे का वैसा ही बताते थे। उसमें कोई भी बनावटीपन या दिखावा नहीं होता था, बल्कि यथार्थ का चित्रण यानी सच्चाई का चित्रण होता था। उनकी अभिव्यक्ति यानी बात कहने के जो तरीका होता है वो बहुत ही सहज है, सरल है, स्वाभाविक है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 84। यहाँ पे जो हम पाठ पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर दयाल का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। अब क्या बता रहे हैं कि ये एक संस्मरण है ना, जो किसके बारे में लिखा गया है, फादर बुल्के के बारे में। वो बताते हैं कि जो हमारी यादें होती हैं उनसे ही एक संस्मरण तैयार होता है, और यादों, क्योंकि यादों पे हमें विश्वास होता है, हमने खुद वो अनुभव किया होता है, इसी वजह से जो संस्मरण है वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो सर्वेश्वर जी ने यह संस्मरण फादर कामिल बुल्के पे लिखा है, और वो जो थे फादर बुल्के वो अपने आप को क्या कहते थे, भारतीय, जबकि उनका जन्म कहाँ हुआ था, यूरोप के बेल्जियम में रैम्स चैपल नाम के शहर में, और रैम्स चैपल को गिरजों यानी चर्च का, पादरियों का, धर्मगुरुओं का, संतों की भूमि कही जाती है, लेकिन फादर बुल्के ने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को, यानी उन्होंने जो अपना जीवन बिताया, जो कर्म किए वो सारे भारत में ही किए। फादर बुल्के एक सन्यासी थे परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा, उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। यानी फादर बुल्के के जो संबंध थे लेखक के साथ वो बहुत ही अच्छे थे, और जो हमें ये संस्मरण पढ़ने से पता चल जाएगा। लेखक ये भी कहते हैं कि जब तक रामकथा है, जब तक रामकथा है यानी राम का नाम याद किया जा रहा है, तब तक ये जो फादर बुल्के हैं इनको भी याद किया जाता रहेगा, है ना। और हिंदी भाषा के प्रति जो इनका प्रेम है उसको हमेशा हर कोई सम्मान की दृष्टि से ही याद करेगा। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 85 पर आइए। तो यहाँ पे शुरू करते हैं आपका पाठ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों हो, यह सवाल किस ईश्वर से पूछें। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देखी इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफेद चोके से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस कर रहा हूँ। तो देखिए, लेखक जब फादर बुल्के को याद कर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं कि उन्हें जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, यानी किसी कारणवश उनके किसी अंग में जहर भरने लगा था, वो अंग खराब होने लगा होगा, काटना पड़ा होगा और ऐसे उनकी मृत्यु हो गई होगी। तो वही वो कह रहे हैं कि ऐसे उनकी मृत्यु क्यों हुई, जिस इंसान के रगों में यानी नसों में सबके लिए मिठास रहती थी, अमृत रहता था, उसको जहर से मरना क्यों लिखा था। अब मैं ये सवाल किस ईश्वर से, किस भगवान, किस अल्लाह से पूछूं जाके, वो तो प्रभु में ही अपना ध्यान लगा के रखते थे, है ना। तो इतनी यातना उम्र की आखिरी देहरी पे, है ना, यानी जब वो इतने बूढ़े हो चुके थे तो उनके शरीर को इतना कष्ट क्यों दिया गया। अब वो याद करते हैं उनको कि वो कैसे थे, लंबे थे, पादरियों के तरह जो फादर होते हैं चर्च के, वो सफेद रंग का चोगा पहनते हैं ना, वैसे ही उन्होंने पहना हुआ था। रंग बहुत गोरा था, चेहरे पे सफेद दाढ़ी थी, आंखें नीली थी, और जो बाहें थे वो हमेशा गले लगाने को खुली रहती थी। वो कहते थे उनमें इतना अपनत्व था, इतनी ममता थी, इतना प्यार था उन लोगों के लिए जो उनके अपने थे या जो उनसे प्यार करते थे। और 35 साल से लेखक भी इसका साक्षी था, यानी लेखक भी ये सब देख रहा था, महसूस कर रहा था, क्योंकि वो 35 सालों से फादर बुल्के को जानते थे। जब वो इलाहाबाद में थे तब भी, और जब फादर दिल्ली आते थे तब भी। और आज उन्हें याद करते हुए लेखक को लग रहा है कि उनकी बाहों का दबाव लेखक की छाती पर है, यानी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि फादर ने उन्हें जैसे गले लगाया हुआ है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल होते, हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपने बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वत्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। वो कह रहे हैं लेखक कि जब मैं फादर को याद करता हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसा कि मैं कोई शांत और दुखी संगीत सुन रहा हूँ, है ना, मन अजीब सा उदास होने लगता है उनको याद करके। ऐसा लगता है जैसे कि मैं करुणा के जल में स्नान कर रहा हूँ, है ना, और उनसे बात करते हुए ऐसा लगता था कि मेरा मन कर्म के संकल्प से भर रहा है, यानी मुझे कर्म करते जाना है, ऐसा संकल्प मेरे मन में आ रहा है। अब वो अपने पुराने दिन याद करते हैं जब वो फादर के साथ रहते थे, तो कैसे उनके साथ हंसी मजाक भी करते थे, है ना, गंभीर चर्चाएं भी करते थे, और जब वो लिखते थे तो अपनी रचनाओं पे उनको फादर से राय भी मिलती थी, सलाह भी मिलती थी कि क्या अच्छा है क्या गलत है, तो वो सुझाव देते रहते थे। और किसी भी उत्सव में या कोई त्योहार हो या कुछ समारोह हो घर में, तो हमेशा जो फादर बुल्के हैं वो हमेशा किसी बड़े भाई की तरह या किसी पुरोहित या पंडित की तरह वहां पे खड़े रहते थे और उन्हें आशीर्वाद देते रहते थे। लेखक कहता है कि मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, यानी बच्चे का जब अन्न प्राशन किया जाता है, पहली बार उसे अन्न खिलाया जाता है, तो किसी पुरोहित या ऐसे ही व्यक्ति से करवाया जाता है, तो लेखक ने फादर को बुलाया होगा। अब उसे वो दृश्य याद आ रहा है कि मेरा बच्चा कितना छोटा था, जब वो पैदा हुआ था तो फादर ने कितने प्रेम से उसके मुंह में अन्न डाला था, और उनकी नीली आंखों में वो वात्सल्य यानी बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो साफ दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ऊंचाई पे हम देवदारू पेड़ की छाया में खड़े हों। इतना सानिध्य, इतना प्यार, इतना आशीष आशीर्वाद था उनके आसपास। कहां से शुरू करें, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया, और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, दो भाई एक बहन, माँ पिता सभी थे। अब वो कह रहे हैं कि फादर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं, मैं कहाँ से याद करूं। फादर बुल्के को जब वो याद करते हैं तो पहली चीज उन्हें जो याद आती है वो याद आती है कि इलाहाबाद की सड़कों पर फादर बुल्के साइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो सन्यासी थे, कोई भी बड़े शौक नहीं रखते थे, इसीलिए वो साइकिल चला रहे हैं। वो साइकिल उनके पास आके रुकती है, फादर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखिए मैंने उसे पढ़ लिया। लेखक याद करता है कि उसने फादर बुल्के को कभी क्रोध में देखा ही नहीं, यानी फादर को कभी क्रोध कभी गुस्सा आता ही नहीं था, हाँ आवेश में आ जाते थे, ममता और प्यार बहुत भरा हुआ था उनके अंदर, कि जब मैं उन्हें देखता था तो हमेशा यही सोचता था कि यूरोप के बेल्जियम का ये इंसान जो इंजीनियरिंग लगभग पूरी कर चुका था, अंतिम वर्ष में था, उसे अचानक ये सन्यासी साधु बनने का ख्याल कैसे आ गया, ये इच्छा कैसे उसके मन में जाग गई, जबकि घर भी अच्छा था, है ना, संपन्न घर था, घर में माता पिता दो भाई एक बहन सब लोग थे, पूरा परिवार था, फिर भी अचानक से ये कैसे हुआ कि उनका मन सन्यासी बनने का कर गया। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 86। आपको अपने देश की याद आती है, मेरा देश तो अब भारत है,
मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ।
हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद?
माँ की याद आती है, बहुत याद आती है।
अब वो क्या हुआ, लेखक जो है वो उनसे जो बात करते थे फादर से, वो उसकी उन बातों को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक बार उन्होंने फादर से क्या पूछा था कि आपको अपने देश की याद आती है। तो फादर ने जवाब दिया कि मेरा देश तो अब भारत है, तो मुझे किसकी याद आएगी। फिर लेखक ने कहा, ये तो आपकी कर्म भूमि है ना, आप यहाँ रह रहे हैं, आपका देश बन गया है मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी जन्मभूमि यानी जहाँ आपका जन्म हुआ उसकी याद आती है। तो फादर कहते हैं कि हाँ याद आती है, मेरी जन्मभूमि बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, रैम्स चैपल। ठीक है, शहर का क्या नाम है? रैम्स चैपल। अब वो पूछते हैं घर में किसी की याद आती है, तो कहते हैं हाँ माँ की याद आती है, बहुत याद आती है, फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है, उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी, अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वे उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की, फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद दो या तीन बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। अब क्या हुआ, लेखक बोलते हैं कि जब ऐसी बातचीत होती थी और पूछते थे कि आपको किसकी याद आती है, तो वो कहते हैं मुझे माँ की बहुत याद आती है, और ऐसा बोलते बोलते अक्सर वो अपनी माँ की स्मृतियों में यानी माँ की यादों में खो जाते थे, डूब जाते थे, और उनकी माँ जो उन्हें चिट्ठियां लिखती होंगी उन चिट्ठियों को वो अपने एक दोस्त डॉक्टर रघुवंश उनको अक्सर दिखाते थे, पढ़ाते थे कि मेरी माँ की चिट्ठी आई है, मुझसे माँ ने ये कहा है। आपका भी कोई अच्छा दोस्त होता है तो आप उससे कुछ ना कुछ शेयर करते हैं ना, कुछ ना कुछ बात बताते हैं। वैसे ही फादर भी अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को अपनी माँ के बारे में, उनकी चिट्ठियों के बारे में अक्सर कुछ ना कुछ बताते रहते थे। अपने पिता और भाइयों को लेके बहुत ज्यादा लगाव उनके मन में नहीं था, पिता व्यवसायी थे, अपने व्यापार के कार्यों में बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे। जो दो भाई थे उनमें से एक भाई पादरी हो गया था वही बेल्जियम में, एक भाई अपना कुछ काम करता था, उसका भी अपना परिवार था। बहन बहुत ही सख्त और जिद्दी थी, उसने बहुत देर से बहुत मुश्किल से शादी की, जब मर्जी हुई तभी शादी की। वो कहते हैं कि फादर को एक आध बार इस चिंता में डूबे भी देखा था कि मेरी बहन की शादी कब होगी, किससे होगी, कैसे होगी। होता ही है ना, भाइयों को अपनी बहनों की शादी की चिंता होती है, वैसे ही फादर को भी अपनी बहन की चिंता होती थी। और जब वो भारत में आकर बस गए थे उसके बाद मुश्किल से दो तीन बार ही वो बेल्जियम गए अपने परिवार से मिलने, वरना वो भारत में ही खुशी खुशी रहते थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए, प्रभु की इच्छा थी, वे बालकों सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बोलके सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। अब आगे बातचीत क्या हुई, वो कहते हैं कि हाँ याद आती है, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, अब मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, है ना, सन्यासी जो होता है उसके मन से फिर मोह जो होता है वो मिट जाता है ना। तो वो कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर यहाँ पे क्यों चले आए। तो वो बच्चों की जैसी सरलता होती है, वैसी मासूमियत होती है बच्चों की, वैसे ही मुस्कुराकर कहते थे कि प्रभु की इच्छा थी इसीलिए आ गया, और मेरी माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। जैसे माँ बाप अक्सर बोल देते ना परेशान होके, जब हम शैतानी कर रहे होते हैं या कोई जिद कर रहे होते हैं, किसी बात को नहीं मान रहे होते हैं, तो हमारे माँ बाप कह देते ना कि अरे ये तो हाथ से गया, वैसे ही उनकी माँ ने भी कह दिया होगा। तो कहते हैं माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और जब वो अपनी इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई को बीच में छोड़कर धर्म गुरु के पास जाते हैं ये कहने कि मैं संन्यास लेना चाह रहा हूँ, और संन्यास के लिए मैं एक शर्त भी रख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मानते हैं जब आप संन्यास लेते हैं तो आप अपने धर्म गुरु के सामने एक शर्त रख सकते हैं, क्योंकि आप हर चीज छोड़ रहे होते हैं, हर चीज का त्याग कर रहे होते हैं, मोह माया से दूर हट रहे होते हैं, इसलिए आप एक शर्त रख सकते हैं। तो वही उन्होंने क्या शर्त रखी संन्यास लेने के समय, कि मैं भारत जाऊंगा। अब उनसे अगला प्रश्न पूछा गया, भारत जाने की बात क्यों उठी, यानी आपने भारत जाने का ही क्यों सोचा, आपके मन में ये ख्याल क्यों आया। देखिए इसी पेज पे, पेज नंबर 86 पर ही आपको
फादर कामिल बुल्के की एक तस्वीर भी दी गई है, चित्र देख सकते हैं उनका फोटो कि वो कैसे दिखते थे, ठीक है। हालांकि तस्वीर बहुत पुरानी है इसलिए ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। जब उनसे पूछा क्या कि आप भारत जाने के बारे में आपके मन में विचार क्यों आया, तो उन्होंने कहा नहीं जानता, बस मन में यह था। बोले पता नहीं कि मुझे क्यों लगा कि मुझे भारत जाना है, लेकिन मेरे मन में आया कि मुझे भारत जाना है, इसीलिए मैंने भारत जाने की बात संन्यास लेते समय कही, ठीक है। आगे देखिए, उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया रामकथा उत्पत्ति और विकास, परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। अब वो क्या बता रहे हैं, उनकी शर्त मान ली गई, उन्हें संन्यास के लिए भारत भेज दिया गया संन्यास के बाद, और उसके बाद उन्होंने जीसेट संघ में पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर वो 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़े, कलकत्ता से उन्होंने बीए किया क्योंकि वो भारत में रह रहे थे तो यहाँ की उन्होंने पढ़ाई की, इलाहाबाद से एमए किया, और उन दिनों इलाहाबाद में जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष होंगे उनका नाम था धीरेन्द्र वर्मा। शोध प्रबंध यानी जो रिसर्च का जो डिपार्टमेंट होता है प्रयाग विश्वविद्यालय यानी इलाहाबाद में, उसका 1950 में वहां रहकर उन्होंने अपनी जो रिसर्च पूरी की, क्या नाम था उसका, रामकथा उत्पत्ति और विकास, ठीक है। इन्होंने जो अपनी शोध पूरी की वो किस पे की थी, रामकथा उत्पत्ति और विकास पे। फादर ने मातर लिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नीलपंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी, और वही बीमार पड़े पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, अब वो क्या कहते हैं, ठीक है, उन्होंने ये किया। उसके बाद मातर लिंग का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है ब्लू बर्ड, जिसका उन्होंने हिंदी में रूपांतर किया यानी ट्रांसलेट किया नीलपंछी नाम से। फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में उन्होंने क्या अध्यापक के रूप में काम किया, हिंदी और संस्कृत का जो विभाग था उसमें वो विभाग अध्यक्ष के रूप में वहां पे रहे। उसके बाद वहां रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश यानी जो आपकी डिक्शनरी होती है वो तैयार की, बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया, फिर वो वहां बीमार पड़ गए और वहां से पटना आ गए, वहां से दिल्ली आए और चले गए, चले गए यानी उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 47 वर्ष 47 ईयर्स हमारे देश में रहके और 73 वर्ष की जिंदगी जीते, ठीक है। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, कभी कभी लगता है वे मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है, उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मन से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी। अब वो क्या कह रहे हैं कि वैसे तो फादर बुल्के थे वो सन्यासी थे, क्यों, संकल्प से, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था वो सन्यास लेंगे, लेकिन लेखक को लगता है कि शायद वो मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि जो सन्यासी हो जाता है, साधु हो जाता है, उसे सारा जो मोह माया होती है, रिश्ते होते हैं, सबको त्याग देना होता है ना, उससे ये बंधन उसे वो छूट जाता है। लेकिन फादर बुल्के ऐसे थे कि जब भी वो कोई रिश्ता बनाते थे, कोई संबंध बनाते थे, तो उसको पूरी तरह से निभाते थे, उसको बीच में वो छोड़ते नहीं थे या कोई भी संबंध को वो तोड़ते नहीं थे। अगर 10 साल बाद भी मिलेंगे तो उसी अपनेपन से मिलते थे। वो कह रहे हैं जब दिल्ली आते थे तब मुझसे मिलते थे, मुझे कहीं भी ढूंढ के समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी झेल कर, मौसम कैसा भी हो, 2 मिनट के लिए ही सही लेकिन मुझसे मिलते जरूर थे। अब बताइए ये संन्यास, ऐसा कौन सन्यासी कर सकता है ना, इतना प्यार, इतना लगाव, इतना संबंधों को लेके चलने वाला कौन सन्यासी होता है। दूसरी उनकी जो चिंता थी वो क्या थी, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की। वो चाहते थे कि हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा बन जाए, और इसके लिए वो हर मंच से, है ना, जहां भी भाषण देते थे या किसी जगह उन्हें बुलाया जाता था, वो मंच से कुछ भी बोलते थे तो हमेशा ऐसे अकाट्य तर्क देते थे, यानी ऐसे तर्क देते थे जिन्हें काटा ना जा सके, जिनके सामने कुछ बोला ना जा सके, ऐसे तर्क देते थे कि हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। और इसी सवाल पे वो अक्सर झुंझला जाते थे कि हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया गया। और जब हिंदी वालों को ही हिंदी की उपेक्षा करते देखते थे, हिंदी का अनादर करते हुए देखते थे, उन्हें बहुत दुख होता था कि ये लोग अपनी खुद की भाषा का सम्मान क्यों नहीं करते, जिस भाषा से उन्हें इतना प्यार था, जबकि वो बाहर के थे, यूरोप के, तो भारत के लोगों को अपनी भाषा से इतना प्यार क्यों नहीं है, ये सोचकर वो हमेशा दुखी और चिंतित हो जाते थे। फिर लेखक कहता है कि फादर की आदत थी कि हमेशा उनका ये स्वभाव था कि वो पूछते थे घर परिवार के बारे में ना, घर में सब कैसे हैं, परिवार में सब कैसे हैं, या तुम्हारे निजी जीवन में कुछ दुख तकलीफ तो नहीं है, वो ऐसे पूछते थे। और अगर आपने उनसे अपने मन का दुख कह दिया, है ना, कोई बात उन्हें बता दी, तो वो पता नहीं उनके मुंह से क्या शब्द निकलते थे, ऐसे सांत्वना भरे शब्द निकलते थे कि आपको, इंसान को तसल्ली हो जाती थी, है ना, बहुत ही सुकून महसूस होता था। एक जो निराशा के भाव होते थे किसी व्यक्ति के मन में, वो हट जाते थे। ऐसे ही लेखक बता रहे हैं कि उनके शब्द थे, हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा, यानी किसी की मृत्यु के बाद, चाहे वो अपने बहुत ही करीबी व्यक्ति की मृत्यु हो, उसके बाद हमें जीवन में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, हमारा जीवन नया हो जाता है, व्यक्ति नया हो जाता है, जीवन शैली नई हो जाती है, हम अलग तरीके से चीजों को समझने लगते हैं। और लेखक की पत्नी की और पुत्र की जब मृत्यु हुई थी, तब फादर ने इन्हीं शब्दों को कहा था कि हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। ये शब्द लेखक को हमेशा याद आते हैं, और लेखक कहता है कि इन शब्दों से, जो उनके मुख से विरल शांति गिर रही थी, झलक रही थी, वो भी मुझे याद आती है कि कितने शांत भाव से उन्होंने कहा था कि सामने वाले को ये शब्द सुन के एक तसल्ली मिल जाए। अब आप देखिए, लेखक को पहले वो याद आया कि जब उनके बेटे का जन्म हुआ, तो उनके बेटे के जन्म के समय भी फादर आए बोल के, है ना, उन्होंने उनके मुंह में अन्न डाला, बेटे के मुंह में, उसको गोद में खिलाया, उसको प्यार किया। और फिर जब उसी बेटे की मृत्यु हुई, तब भी लेखक ने और लेखक के साथ मिलकर फादर ने ये सारी चीजें साथ में सही, यानी आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फादर कामल बुल्के हैं और लेखक, दोनों के बीच में कितना गहरा संबंध रहा होगा, है ना। आज जब फादर नहीं है तो लेखक को कितना अकेला लगता हो, क्योंकि जब उनके परिवार के लोग नहीं थे तो उनको जो शांति देने वाला व्यक्ति था वो केवल फादर थे, और अब फादर भी उनके पास नहीं है। आगे देखिए, आज वे नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों को सूजी अंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी, जो शांति बरसती थी वे चेहरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह जी उसे उतार रहे थे। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब वो नहीं है, दिल्ली में रह के वो बीमार रहे और मुझे पता भी नहीं चल पाया, बाहें खोलकर जैसे मिलते थे वो मिल भी नहीं पाए, आज जब मैंने उन्हें देखा तो वो बाहें कहाँ थी, अपने जिस्म पे पड़ी थी, उंगलियां सूज गई थी और एक ताबूत में बंद पड़े थे, चेहरे पे जो शांति रहती थी वो शांति अभी भी वैसे ही थी। और ये दिन क्या था, 18 अगस्त 1982, यानी 18th August 1982 की सुबह 10 बजे का समय, ठीक है। वहां उनके कब्रगाह में निकाला गया उनके ताबूत को, जिसमें बहुत से लोग आए थे, कुछ पादरी थे, रघुवंश जी जो उनके मित्र थे उसका बेटा था, और उनके परिजन थे, काफी लोग आए और उन्होंने ताबूत को निकाला।
फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घड़ी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छांती और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जनेंद्र कुमार, विजेंद्र, स्नातक अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस अंकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्रों के चारों तरफ। यानी इतने सारे लोग जो उनके करीबी थे वो वहां पे मौजूद थे और वहां कब्रगाह में कब्र खोद दी गई थी, तो वो कह रहे हैं कि जमीन ऐसा लग रहा था कि मुंह खोले खड़ी तैयार बैठी है उन्हें अपनी गोद में सुलाने के लिए। तो फादर की देह यानी फादर का जो शरीर था उसे पहले कब्र के ऊपर लिटाया मसीही विधि से, यानी जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, ईसाई लोग, उनके जो तरीके होते हैं अंतिम संस्कार के, उस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना ने ये संस्कार पूरा किया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की, फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लोग जिसकी मृत्यु हो गई होती है उसे याद कर रहे होते हैं, उसके बारे में कुछ शब्द कहते हैं और फिर उनको कब्र में सुला दिया जाता है। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। अब वो क्या कह रहे हैं कि पता नहीं इन्होंने कभी सोचा होगा कि नहीं कि इनकी मृत्यु पर कोई रोएगा या नहीं रोएगा, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई और आज जब वो कब्र में लिटाए जा रहे थे तो रोने वालों की संख्या बहुत थी और नम आंखें यानी जिनकी आंखें भीग चुकी थी वो तो इतने लोग थे कि स्याही फैलाना जैसा, यानी कि उनको गिनना संभव ही नहीं था। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थी किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। अब वो कहते हैं जिसमें हम सबसे ज्यादा छायादार है ना, यानी हम सबको जो सबसे ज्यादा सानिध्य देता था, सबसे ज्यादा प्यार करता था, सबसे ज्यादा जिसके मन में आत्मीयता थी, आज वही मानवीय करुणा की दिव्य चमक हमें छोड़ के ऊपर चली गई और उनकी याद हमेशा हमेशा के लिए हम सबके मन में बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति को, उन पवित्र आत्मा को याद करके श्रद्धानत हूं, यानी कि श्रद्धा से, सम्मान से अपने सिर को झुकाता हूं उन्हें याद करते हुए। ठीक है, इस तरह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया यह संस्मरण फादर कामिल बुल्के को समर्पित था, जिसमें उन्होंने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताया कि उनका जीवन कैसा था। ये पाठ आपका पूरा होता है, अब प्रश्नोत्तर जो है वो हम अगले ऑडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।